From the conference center at Temple Square,
Salt Lake City में Temple Square के सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों की यीशु मसीह के गिरजे का 183rd महासम्मेलन है। इसमें गिरजा के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत मार्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा। गिरजे के सदस्य और पदाधिकारी विश्व की सभी जगहों से अपनी गिरजे के मार्गदर्शकों की सलाह और निर्देश प्राप्त करने आए हैं। इसका प्रसारण बोनोविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। अध्यक्ष डीटर एफ उपडोर्फ गिरजे के प्रथम अध्यक्षता के द्वितीय सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे।
भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 183वें महासम्मेलन के प्रथम सत्र में आपका हम स्वागत करते हैं और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस सेंटर और विश्व भर में भाग ले रहे सदस्यों और मित्रों का जहाँ कहीं भी आप हैं गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने कहा है कि मैं इस सत्र का संचालन करूं। हम जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं जो इस पूरे महासम्मेलन के दौरान उपस्थित रहेंगे। इस सत्र का संगीत मंडप गायन मंडली द्वारा मैक बिलबर्ग के निर्देशन में होगा। रिचर्ड एलियोट और एंड्रू अंसवोर्स ऑर्गन बजाएंगे। गायक मंडली ने रिडीमर ऑफ इज़राइल गाकर इस सत्र को आरंभ किया है और अब हमारे लिए इन हिम्स ऑफ प्रेज गाएगी। फिर सत्र के एल्डर रैंडल के बैनर प्रार्थना करेंगे।
Who's counsels keep the mind? Our beloved Father in heaven,
we are हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपके बहुत आभारी थे इस मौके के लिए, सारे संसार में एकत्रित होकर यह महासम्मेलन गिरजे की सुनने के लिए। हम आपके सुख की योजना के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके पुत्र के प्रायश्चित के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम उसके सुसमाचार के लिए, उसके पुनर्स्थापन के लिए, इन अंतिम दिनों में करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जीवित भविष्यवक्ता के लिए, थॉमस मॉन्सन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप उनका समर्थन करेंगे, उनका स्वस्थ रखेंगे। हम 12 प्रेरितों की परिषद के सदस्यों को की भी प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपके निर्देशों का पालन कर सकें। जो इस वक्ता इस सम्मेलन में बोलेंगे उनके साथ हों, उनके मदद करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके साथ हों, ताकि हम अपने मनों और दिलों को खोल सकें और उन सब बातों को सुन सकें जो हम सुनना चाहते हैं और वो बन सकें जो आप बनाना चाहते हैं। हम इन सब आशीषों के लिए विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
It will now be our privilege to hear.
अब हमारे भविष्य वक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन को सुनने का हमारा सौभाग्य होगा। उनके संदेश के बाद गायक मंडली हार कॉली नेशंस गाएगी। इसके पश्चात हम 12 प्रेरितों की परिषद के अध्यक्ष बॉयड की पैकर को सुनेंगे। उनके बाद अध्यक्ष धर्माध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार धर्माध्यक्ष डीन एम डेविस बोलेंगे। फिर युवतियों की महाअध्यक्ष बहन एलन एस डाल्टन हमें संबोधित करेंगी।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गिरजे के 133rd महासम्मेलन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपसे मिले पिछले 6 महीने के दौरान मुझे छोड़ा समय यात्रा करने और आप में से कुछ के साथ आपके क्षेत्रों में मिलने का मौका मिला। अक्टूबर महासम्मेलन के बाद मैं जर्मनी गया, जहां इस देश के साथ साथ ऑस्ट्रिया के बहुत से स्थानों पर हमारे सदस्यों से मिलने में मेरा सौभाग्य था। अक्टूबर में अंत में मैंने कनाडा कैलगरी अल्बर्टा मंदिर का एल्डर और बहन एम रसल बैलर्ड, एल्डर और बहन क्रेग सी क्रिस्टेंसन और एल्डर और बहन विलियम आर वाकर की सहायता में समर्पित किया। नवंबर में मैंने बॉयस आहेडो मंदिर का पुनः समर्पित किया। एल्डर और बहन हाविड बेडनर, एल्डर और बहन क्रेग सी क्रिस्टेंसन और एल्डर बहन विलियम आर वाकर भी इस यात्रा का मेरे साथ थे और समर्पण में भाग लिया था। इन दोनों समर्पण के संबंध में जो सांस्कृतिक समारोह हुए थे वे बहुत शानदार थे। मैं कैलगरी और सांस्कृतिक समारोह में व्यक्तिगत रूप में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उस दिन बहन मार्मन का 85th जन्मदिन था। मैंने महसूस किया था मुझे उनके साथ होना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुझे समारोह के अपने कैमरे में CCTV पर देखा। बॉयस में मंदिर जिले में 9000 से अधिक युवाओं ने सांस्कृतिक समारोह में भाग लिया था। इसने इतने अधिक युवा लोग शामिल हुए हैं, समारोह स्थल में परिवार के सदस्य के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी। अपने पिछले महीने अध्यक्ष डीटर एफ उगडोर्फ, बहन उगडोर्फ और एल्डर और बहन जेफरी आर हॉलैंड और एल्डर बहन गैगरी एक स्वीकिस्टर के साथ में हमारे नए बने मंदिर का समर्पण करने गए थे। अन्य मंदिर हैं जिनकी घोषणाओं हो चुकी है और उनमें कुछ आरंभिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं या कुछ निर्माणधीन हैं। आज सुबह के 2 अतिरिक्त मंदिरों की घोषणा करने में सौभाग्य मिलता है जो कि आने वाले कुछ महीनों में वर्षों में इस स्थानों पर बनाए जाएंगे, सीडर सिटी यूटा और रियो डी जेनेरो ब्राजील। भाइयों और बहनों, मंदिर निर्माण निरंतर जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर महासम्मेलन में मैंने पूरे समय के प्रचारक सेवा में जाने वाले युवकों और युवतियों की आयु में बदलाव की घोषणा की थी। अब युवक 18 वर्ष की आयु में और युवतियां 19 वर्ष की आयु में सेवा करने के योग्य हो गए हैं। इसको लेकर हमारे युवाओं का जवाब बहुत ही अद्भुतपूर्ण और प्रेरणा देने वाला रहा है। 4 अप्रैल तक यानी दो पहले हमारे पास 65,634 पूरे समय के प्रचारक सेवा कर रहे थे, 20,000 और अपनी नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अभी प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र नहीं गए हैं और 6,000 से अधिक अपने धर्माध्यक्षों और स्टेक अध्यक्षों के साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया में हैं। इन बढ़ी हुई प्रचारकों की संख्या और शामिल करने के लिए हमारे लिए 58 नए मिशन बनाना जरूरी हो गया है। इस प्रचारक बल को कायम रखने की सहायता के लिए और क्योंकि हमारे अधिकतर प्रचारक विनम्र परिस्थितियों से आते हैं, हम आपको जितनी आपकी क्षमता हो गिरजे में जनरल प्रचारक कोष की उद्धारक का योगदान करने का निमंत्रण देते हैं। अब भाइयों और बहनों, हम आज और कल प्रेरणादायक संदेशों को सुनेंगे, वे जो हमारा संबोधन करेंगे। उन्होंने प्रार्थना पूर्वक उसे जानने के प्रयास किया है जो प्रभु चाहता है। जिन संदेशों को हम सुनने जा रहे हैं, मैं आपसे उन्हें ध्यान से सुनने की स्वीकार करने की सलाह देता हूं और ऐसा करेंगे। ये मेरी यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन।
Shout the refrain, truth is restored. 1992
में 12 के सेवक के रूप में 9 वर्ष और 12 के सदस्य के रूप में 22 वर्ष करने के बाद मैं 68 वर्ष का हो गया था। मैंने महसूस किया कि मैंने लिखना शुरू किया करूं, जिसे मैंने अपनी अधूरी रचना नाम दिया है, जो इस प्रकार है। एक रात मुझे विचार आया, एक विचार गंभीर और गहरा, ये जब मैं बहुत हताश था तब आया, इतना थका मांदा कि मैं सो ना पाया। मैं बहुत व्यस्त था। जब मैं 68 वर्ष का था, मैं सरपट दौड़ सकता था, मेरे कंधों में कोई दर्द ना था, मैं दो पंक्तियों को बार बार दो बार पढ़ सकता था और उसे दोहरा सकता था, मैं अंतहीन समय तक कार्य कर सकता था और एक ही सांस में मैं, और इन कामों को जो मैं अब नहीं कर सकता, तब मैं इनमें निपुण था। यदि मैं इन सालों को पीछे लौटा पाया, इनका चुनाव कर पाता, मैं युवावस्था के लिए इनकी अदला बदली नहीं करता। मुझे बहुत कुछ खोना पड़ता, मैं आगे जाना बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपने युवा को सब चीज करने के लिए बेशक महान हूँ। चीजें मैं खोता यदि मैं पीछे लौटा, मैं जो मैं समझता हूँ। 10 साल के बाद मैंने इस कविता के कुछ पंक्तियों को जोड़ने का निश्चय किया। 10 साल बीत गए, कौन जाने कहाँ, और उनके साथ बहुत सा दर्द। एक धातु के कूले ने जो मेरी लड़खड़ाहट को हटाया, फिर मैं सीधा होकर चल सकता हूँ। एक अन्य पट्टी मेरी गर्दन को स्थिर करती है। बहुत शानदार आविष्कार, इसने मेरे पोलियो को दूर किया। अकड़ी गर्दन की पीढ़ी में मैं शामिल हो गया। बुढ़ापे के चिन्ह को देख सकते हैं, ये कभी ठीक नहीं होंगे। केवल एक चीज बल में बढ़ती है, मेरे भूलने की आदत। आप पूछते हैं मैं क्या आपको याद करता हूं, बिल्कुल आप वैसे ही हैं। आप बिल्कुल परेशान ना होना, मैं यदि मैं चार याद ना कर पाऊं आपका नाम, मैं सहमत हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन आयु इन कीमतों की सच्चाई लाई है। जो बात बढ़ाती है, जो आशीषें आई हैं मेरे जीवन में, उत्तम वस्तु साथी और दिलासा है। मुझे मेरी पत्नी से मिलती है, हमारे बच्चे अब सब बड़े होकर शादी कर ली है, अपने स्वयं के घर परिवारों के साथ, पंचों और नाती पोतों के साथ, वे कितने जल्दी बड़े हो गए। मैंने अपना एक अंश नहीं बदला, फिर भी युवस्था पाने के लिए हम बूढ़े होने के लिए बने हैं, क्योंकि इसके साथ सच्चाई का ज्ञान मिलता है। आप पूछते हैं भविष्य में क्या होगा, मेरी नियति क्या होगी। हमें जाना होगा और शिकायत ना होगी पूछना। अब मैं 88 का होऊंगा और पिछले साल मैंने इनमें इन पंक्तियों को जोड़ा। अब तुम जानते हो कि मैं 88 का हूं। साल बहुत तेजी से बीत गए, मैं चलता हूं, लंगड़ाता हूं, मैं छड़ी पकड़ता हूं और अंत में सवार होता हूं। मैं बार बार झपकी लेता हूं, लेकिन मैं पौरित स्थिति कायम है और मेरी शारीरिक चीजों में कमी नहीं, महान आत्मिक लाभ मिले हैं। मैंने लाखों मील सांसर की यात्रा की है और अभी लाखों भी जाने बाकी हैं, और उपग्रह की मदद से मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई। अब मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूं, मैं प्रभु का निश्चय जानता और प्रभु प्रेम करता हूं। मैंने उनके साथ प्राचीन का प्रमाण दिया जा सकता हूं। मैं उनके पवित्र शब्द कहता हूं। मैं जानता हूं उसने गतसमनी में क्या महसूस किया, इसका विचार ही कठिन है। मैं जानता हूं उसने वह सब हमारे लिए किया, इससे महान हमारा कोई मित्र नहीं। मैं जानता हूं कि वह फिर से नए रूप में आएगा, शक्ति और महिमा के साथ। मैं जानता हूं मैं फिर उसे देखूंगा इस मेरे जीवन की कहानी के अंत में। मैं उसके घायल पूरों को झुकूंगा, उसकी आत्मा की चमक महसूस करूंगा। मेरी फुसफुसाहट कांपती आवाज कहेगी, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं। मैं अवश्य ही जानता हूं। हमारे घर के पिछवाड़े की खिड़कियों से फूलों का एक छोटा सा बगीचा और जंगल का दृश्य है, जिसके किनारे छोटी जलधारा है। घर की दीवार के बीच से सटी है और इसकी घनी इंग्लिश लताओं से ढकी है। बहुत सालों से ये लताएं छोटी छोटी चिड़ियों का घोंसला बनाने का स्थान रही है। इस झाड़ियों में घोंसले लोमड़ी और रकून और बिल्लियों से सुरक्षित रहते हैं जो रात में वहां घूमते हैं। एक दिन लताओं में बहुत हंगामा हुआ। उत्तेजित कष्ट की चिल्लाहट से आसपास के जंगल में 8-10 चिड़ियां वहां कर उनकी चिल्लाहट में शामिल हो गई। तुरंत ही मुझे हंगामे का कारण नजर आया। एक सांप लताओं से फिसल कर खिड़की से लटका हुआ था कि आराम से इतना लटका हुआ था कि मैं उसे आराम से खींच सकता था। सांप का शरीर बीच दो भागों में दो जगह से फूला हुआ था, जिससे यह स्पष्ट था कि उसने घोंसले से चिड़ियों के दो बच्चों को निगल लिया था। 50 सालों में वहां रहते हुए हमने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। यह जीवन में एक बार किया जाने वाला अनुभव था, या ऐसा हमने सोचा था। कुछ दिनों के बाद एक और हंगामा हुआ। इस बार झाड़ियों से ढके हमारे कुत्ते के बाड़े के ऊपर था। हमने उसी चिल्लाहट को सुना। उसी प्रकार की चिड़ियां आसपास से वहां एकत्रित हो गईं। हम जानते थे हमला किसने किया था। हमारा पोता बाड़े के ऊपर चढ़ा और सांप को खींच लिया, जिसने उसके मुंह में मां चिड़िया को पकड़ा हुआ था, जो उसने घोंसले से पकड़ी और मार डाली थी। मैंने अपने आप से कहा, यह क्या हो रहा है? क्या आदन की वाटिका में फिर से हमला हो गया है? तभी मेरे मन में भविष्यवक्ता द्वारा कही गई चेतावनियां आई। हम हमेशा शैतान के प्रभाव से सुरक्षित नहीं रहेंगे, यहां तक कि अपने घरों के अंदर भी। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा करने की जरूरत है। हम बहुत खतरनाक संसार में रहते हैं जो उन चीजों पर हमला करता है जो आत्मिक है। परिवार पर समय और अनंत काल के मूलभूत संगठन देखी और अनदेखी ताकतों का आक्रमण हो सकता है। शैतान चारों ओर है। उसका उद्देश्य चोट पहुंचाना है। यदि वह परिवार को कमजोर और नष्ट कर सकता है तो वह सफल हो जाएगा। अंतिम दिनों के संत के परिवार के सर्वोत्तम महत्व को पहचानते हैं और इस तरह के रहने का प्रयास करते हैं कि शैतान हमारे घरों में सेंध ना लगा सके। हम यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए आवश्यक आज्ञाकारिता के साधारण कार्य करके और बनाए गए अनुबंधों का सम्मान करके अपने और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा और बचाव पाते हैं। यशा ने कहा था, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। वही शांति प्रकटीकरणों में कही गई है, जिसमें प्रभु कहता है, यदि तुम तैयार हो तो तुम्हें भयभीत न होगे। पौरोहित्य की पुरुष शक्ति घर और इस पर रहने वालों लोगों की सुरक्षा के लिए दी गई है। पिता के पास बच्चों को सिखाने और आशीष देने और उनके लिए सुसमाचार की धर्मनीतियों को उपलब्ध कराने और प्रत्येक दूसरी आवश्यक पौरोहित्य सुरक्षा देने का अधिकार और जिम्मेदारी है। उसे प्रेम और निष्ठा का प्रदर्शन और मां का सम्मान करना है, ताकि उसके बच्चे उसके प्रेम को देख सकें। मैं जान गया हूं कि विश्वास का वास्तविक शक्ति है, वह केवल एक अभिव्यक्ति या भरोसा नहीं। धर्मी मां की विश्वासी प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली बहुत कम चीजें हैं। पवित्र आत्मा के उपहार और यीशु मसीह के मसीह के बारे में और उनकी अपने सिखाओ और अपने परिवार को सिखाओ। इससे बड़ा काम अपने घर की चार दीवारी के भीतर नहीं करोगे। हम जानते हैं कि हम स्वर्गीय पिता के आत्मिक बच्चे हैं। यहाँ पृथ्वी पर हम अपने नश्वर शरीर मिलते हैं और हमारी परीक्षा होती है। हम जिनके पास नश्वर शरीर हैं, उनसे अधिक शक्ति है जिनके पास शरीर नहीं है। क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार चुनने और कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम इसके परिणामों को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वे जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे। चुनने की स्वतंत्रता को धर्मशास्त्र में नैतिक स्वतंत्रता के रूप में बताया गया है, जिसका अर्थ है कि हम अच्छाई और बुराई के बीच में चुनाव कर सकते हैं। शैतान हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का लालच देगा। धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता के अनुसार, जो कि मैंने उसे दी है, भविष्य से संबंधित सिद्धांत और नियम के तहत कार्य कर सकता है, कि प्रत्येक व्यक्ति न्याय के दिन अपने स्वयं के पापों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आलमा ने सिखाया था कि प्रभु के पापों के लिए थोड़ी सी भी छूट नहीं दे सकता। उसको समझने के लिए हमें पाप को पापी से अलग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब वे व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को उधारकर्ता के सामने लाए, स्पष्ट रूप से अपराध के अभियोग को उसके 6 शब्दों में खारिज कर दिया गया था, जा फिर कभी पाप ना करना। यह उसकी सेवकाई की आत्मा है। सहनशीलता एक विशेषता है, लेकिन सभी विशेषताओं के समान जब अत्यधिक हो जाए तो यह स्वयं को अधर्म में बदल देती है। हमें सहनशीलता के जाल से सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि हम इसके द्वारा निगल ना लिए जाएं। देश के कमजोर कानून की अनुमति पाकर अनैतिकता के जायज कार्य उन आत्मिक परिणामों की गंभीरता को कम नहीं करते जो परमेश्वर की शुद्धता के नियम का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप आते हैं। मसीह की ज्योति एक मास ऐसा मार्गदर्शक है जो प्रत्येक व्यक्ति को सही और गलत की पहचान कराता है के साथ पैदा हुए हैं। हम उसी ज्योति के साथ क्या करते हैं और कैसे हम धार्मिकता से जीने के लिए उन प्रेरणाओं का जवाब देते हैं, इस नश्वरता की परीक्षा का हिस्सा है, क्योंकि मसीह की आत्मा प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है ताकि वह अच्छे और बुरे को जान सकें। इसलिए मैं तुम्हें निर्णय लेने का तरीका बताता हूं, क्योंकि हर चीज जो अच्छा करने के लिए आमंत्रित करती है वह मसीह में विश्वास करने के लिए उकसाती है। वह मसीह के सामर्थ्य और विश्वास द्वारा भेजी जाती है। इसलिए पूर्ण ज्ञान से तुम जान सकते हो कि परमेश्वर की ओर से है। हम में से प्रत्येक को पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं का प्रोत्साहन का जवाब देने की स्थिति में रहना चाहिए। प्रभु के पास हमारे मनों में शुद्ध ज्ञान देकर हमारा मार्गदर्शन करने, हमें सिखाने, हमें चेतावनी देने का एक तरीका है। परमेश्वर का प्रत्येक बेटा या बेटी तुरंत उन बातों को जान सकता है जो उन्हें जानने की आवश्यकता है। प्रेरणा और पट्टीकरण और इन कार्यों पर करना सीखें। वह सब जो मैंने पढ़ा है और सिखाया है और सीखा है, उसकी आध्यात्मिक अत्यधिक कीमती और पवित्र सच्चाई जो मैं देना चाहता हूं, उदारकर्ता यीशु मसीह के मेरी विशेष गवाही है, वह जीवित है। मैं जानता हूं वह जीवित है। मैं उसका गवाह हूं। मैं उसकी गवाही दे सकता हूं और देता हूं। वह हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता है। मैं इसके लिए निश्चित हूं। इसकी गवाही मैं देता हूं। आमीन।
On October
17, 1989, while driving, 17 October 1989, मेरे पास 4 फटे टायर हैं, परंतु ये ना तो फटे टायर थे और ना ही बस थी। ये अधिक शक्तिशाली भूकंप था। जैसे मैं लाल बत्ती पर रुका, वहां सड़क में तरंगें होने लगी जैसे समुद्र की लहरें हो, बाजार की गली के नीचे से होते हुए गुजरी। मेरे सामने एक बड़ी इमारत हर कोने से हिल रही थी। मेरी दाएं ओर की पुरानी इमारत से ईंटें गिरनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे भूकंप आता रहा, लुमा प्रेरित भूकंप सैन फ्रांसिस्को के तटीय क्षेत्र पर उन दिन 5:30 बजे शाम को रुक गया था और 12,000 से अधिक लोग बेघर हो गए थे। सैन फ्रांसिस्को के तटीय क्षेत्र में भूकंप की गंभीर शांति पहुंचाई थी। सैन फ्रांसिस्को और ऑकलैंड में विशेष स्थायी भूमि थी। सैन फ्रांसिस्को में मेरिना जिला की भूमि का निर्माण रेत, गंद, रोड़ी और दूसरे पदार्थ से मिलाकर खारा पानी की मात्रा अधिक प्रतिशत के मिश्रण के साथ बनाया गया था। सैन फ्रांसिस्को तट 1906 सैन फ्रांसिस्को भूकंप में के बाद कुछ की पूर्ति रोड़ी को डालकर कर दिया गया था। 1915 के लगभग भूमि के मिश्रण पर घर बनाए गए थे। 1979 के भूकंप में पानी से ठोस किए गए बिना मिट्टी, रेत और रेड़ी और तरल देकर बदला था, जैसे बहुत सी इमारतों के गिरने के कारण थे। साधारणता से इमारतों का निर्माण बहुत मजबूत नींव पर नहीं किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में भूकंप से कई जिंदगियों पर प्रभाव छोड़ा था, मैं भी शामिल हूँ। उस दिन की घटना पर चिंतन कर मेरा मन और हृदय ने पुनः पुष्टि की कि तूफानों, भूकंप और जीवन के दुर्भाग्य में हमें मजबूत नींव पर निर्माण करना चाहिए। निफाइट भविष्यवक्ता इलेमेन बिना गलती के पुष्टि किए हमारे जीवनों का निर्माण का महत्व मजबूत नींव पर हो, यहाँ तक यीशु मसीह की नींव पर। और अब मेरे बेटों, स्मरण करो, स्मरण रखो कि तुम्हें अपने उद्धारकर्ता जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है उसकी चट्टान पर अपनी नींव को बनाना है, जिससे कि जब शैतान अपनी प्रबल हवा के झरोखों को, हाँ भवंडल के घोरे को, अपने सभी ओले और भीषण आंधियों के थपेड़ों को तुम्हारे ऊपर भेजे, तब उसके पास वह शक्ति ना होगी जो तुम्हें खींचकर संतापों और अनंत दुखों की खाई में फेंक सके, क्योंकि जिस चट्टान पर तुमने अपनी नींव डाली थी वह निसंदेह ऐसी नींव है जिस पर अगर लोगों ने अपना मकान बनाए तब वह कदापि गिर नहीं सकती। आधुनिक मंदिरों के निर्माण के ध्यानपूर्वक ढांचा, वास्तुविधा और इमारत की सामग्री का इस्तेमाल कर दिया जाता है। मंदिर जहां पर निर्माण होना है की जगह की भूमि और भूत शास्त्र की जांच की जाती है। विचारे गए स्थान की जलवायु और मौसम परिवर्तन का अध्ययन होता है ताकि मंदिर उस जगह के तूफानों और सामान्य मौसमों में खड़ा रह सके। परंतु मंदिर का नमूना और अनचाहे भूकंपों में, भवंडरों, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक मौसम जो आ सके में खड़ा रह सके। कई मंदिरों में सीमेंटी मसाला या स्टील की पट्टियां धरती की गहराई तक डालकर मंदिर की नींव पर लंगर लगाकर करते हैं। जैसे हमारे समय के नमूनाकर्ता और कारीगर हमारे प्रिय और कृपालु स्वर्ग में पिता और उसके पुत्र की योजना, औजार और दूसरे साधन हमारे प्रयोग के लिए बनाए ताकि हम अपने जीवन को अटल और दृढ़ बना सकें। योजना उद्धार की योजना, आनंद की महायोजना योजना हमें एक साफ चित्र दिखाती है और आरंभ और अनंत को समझाती है और विशेष कदमों में शामिल है धर्म विधियां। पिता के प्रत्येक बच्चे को उसके पास वापस लौटने और उसके साथ सदा रहने के लिए अति आवश्यक है। विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का उपहार और अंत तक हमारे जीवन के ब्लूप्रिंट हैं। ये उसी योचित इमारत के भाग बनाने में मदद करते हैं जो कि मसीह के प्राशी से हमारे जिंदगियों में भरोसा आएगा। यह व्यक्ति के जीवन के ढांचे को तेज करता है और अवस्था का सहारा है। तब जैसे मंदिर की योजना विशिष्ट है जो पूरी तरह से निर्देशन देती है के बारे में कैसे बनाता है और जरूरी साधनों से जोड़ता है। प्रार्थना, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, प्रभु भोज लेना और विशेष पुरोहिती धर्म विधियां प्राप्त करना विशिष्ट बन जाते हैं जो कि जीवन के आकार को जोड़कर एक साथ बंधता है। ऐसी विशिष्टता को लागू करने, संतुलन बनाए रखने में अत्यावश्यक है। उदाहरण के लिए मिश्रण बनाने की क्रिया सही मात्रा में रेत, रोड़ी, सीमेंट और पानी का इस्तेमाल करने से अधिक पक्का होते हैं। एक सही मात्रा नहीं या इस सीमेंट की किसी भी भाग की मात्रा निश्चित मिश्रण को कमजोर बनाती है और ये सही काम नहीं करते हैं। इस तरह से यदि हम अपने जीवन को दैनिक प्रार्थना के धर्मशास्त्रों से पोषण ना लें, साप्ताहिक प्रभु भोज लेकर शक्ति ना पाएं और पुरोहित धर्म विधियों में अक्सर भाग ना लें, जैसे मंदिर धर्म विधियां को करने में उचित संतुलन पैदा नहीं होता है, हमें भी हमारे आत्मिक शारीरिक शक्ति को कमजोर होने का खतरा होता है। पौलुस एक पतिफिसो को कहता है, इस रास्ता से अंदर के साथ हमारे चरित्र और आत्मा की प्रगति में भरोसे और संतुलन की जरूरत है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है। प्रार्थना ही एकमात्र मूल और हमारे विश्वास और चरित्र की इमारत के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। प्रार्थना द्वारा हम अपना आभार, प्रेम और परमेश्वर की ओर लगन प्रकट करने में समर्थ होते हैं। प्रार्थना द्वारा हम अपनी इच्छा उसके सामने रखते हैं और उनकी शिक्षाओं से अपने जीवनों में बदल पाते हैं। प्रार्थना द्वारा हम अपने जीवनों में उसका मार्ग और प्रभाव को दृढ़ करते हैं। यह तक प्रतिकरण भी है। अल्मा ने सिखाया, अपने सभी कामों के लिए प्रभु से राय लो और वह तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारा निर्देशन करेगा। रात को जब तुम विश्राम करो तब प्रभु का स्मरण करो, जिससे वह सोते समय तुम्हारी रक्षा करे, और जब भोर को उठो तब परमेश्वर के प्रति तुम्हारा हृदय कृतज्ञ से भरा रहे, और अगर तुमने यह सब किया तब अनंत दिन तुम्हें उठा लिया जाएगा। परमेश्वर के साथ अपनी भावनाओं, एहसासों और अभिलाषा को ईमानदारी और हृदय की गहराई से प्रार्थना के द्वारा से बांटना चाहिए। हम में से प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण और वास्तविक होता है, जैसे हम सांस लेना और खाना खाते हैं। धर्मशास्त्रों को रोजाना खोजना हमारे विश्वास और चरित्र को भी दृढ़ करेगा। वैसे ही जैसे हमारे शरीर के लिए पोषण खाने से होता है, हमारी आत्मा का मसीह के शब्दों से भोज करने के द्वारा फिर से भरा हुआ और बलवंत होगा, जैसे भविष्यवक्ताओं ने लेखों में लिखा। निफाय ने सिखाया, मसीह की वाणी का प्याला पियो, क्योंकि देखो मसीह की वाणी तुम्हें बतलाएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए धर्मशास्त्रों को पढ़ना अच्छा है, अपने आप पढ़ना उद्धारकर्ता की शिक्षा की गहराई और विस्तारता से ले पाना पर्याप्त नहीं है। खोजना, मनन करना और मसीह के शब्दों को लागू करना, जैसे धर्मशास्त्रों में सिखाए गए ज्ञान और वृद्धि हमारी नाश्वर समझ से परे होते हैं। ये हमारे वादों को हर परिस्थितियों में बल देते हैं और हमें अच्छा करने की आत्मिकता से सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम अपने जीवन को बल दे सकते हैं और उद्धारकर्ता की नींव से दृढ़ता से जुड़े रहने से योग्यता के साथ हर सप्ताह प्रभु भोज लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। प्रभु भोज धर्म विधि हर गिरजे के सदस्य को उसको मनन करने का मौका पहले से ही देती है, प्रक्रिया को करते हुए या नहीं करते हुए, जिससे पश्चाताप की जरूरत हो सकती है, और तब रोटी और पीने से पानी जैसे यीशु मसीह के शरीर और लहू के प्रतीक और उसके प्राशित की गवाही को स्मरण करते हुए लेते हैं। यदि ईमानदारी और दीनता के साथ करते हैं, हम अनंत अनुबंधों का नवीनीकरण करते, साफ और पवित्र होते और वचन प्राप्त करते हुए कि उसकी आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी। आत्मा की क्रिया जैसे गाढ़ा एक जोड़ लगाना, जो कि सिर्फ पवित्र ही नहीं पर करता परंतु सभी बातों को स्मरण करता और यीशु मसीह की साक्षी बार बार देता है। योग्यता के साथ प्रभु भोज लेना नींव की चट्टान के और यहाँ तक कि यीशु मसीह के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध को मजबूती देता है। अपने शासन के दौरान यीशुकर्ता ने प्रेम और सिद्धांतों, नियमों और आवश्यक कामों के साथ सिखाया था कि हमारे जीवन बचाए जाएंगे और हमारे चरित्र को शक्ति मिले। पहाड़ी के संदेश के अंत में उसने कहा था, इसने जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है और पानी, वर्षा, बाढ़े, आंधियां आए और उस घर से टकराए, परंतु वह गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई भी मेरी बातों को सुनता है और उन पर चलता नहीं, वह उस मूर्ख के समान है जो अपना मकान बालू पर बनाता है और मैं बरसा, बाढ़े आए, आंधियां चली और उस घर से टकराए और वह घर बाढ़े जोर से गिरकर नष्ट हो गया। भाइयों और बहनों, हम में से कोई भी नहीं अपना घर काम करने की जगह या पवित्र आराधना के घर बालू, रोड़ी या बिना उचित योजना और साधन के बनाएगा। चलो उद्धारकर्ता के पास जाकर उसका आमंत्रण और को स्वीकार करें। चलिए हम अपनी जिंदगियों का सुरक्षित और एक मजबूत नींव पर निर्माण करें। मैं विनम्रता से गवाही देता हूँ कि हमारा जीवन एक आश्रय यीशु मसीह और उसके प्रायश्चित और ध्यान पूर्वक अपनी खुशी के लिए उसकी योजना का अनुसरण करना, दैनिक प्रार्थना, दैनिक धर्मशास्त्र अध्ययन करना और साप्ताहिक प्रभु भोज लेना हमें शक्ति देता है। हम सच्चा अनुभव, व्यक्तिगत उन्नति और हम जीवन की आंधी और तूफानों में सफलता पूर्वक खड़े रहने को अच्छे से तैयार होंगे। हम वादे किए गए खुशी और आनंद का अनुभव लेंगे और हमारे पास भरोसा होगा कि हमारे जीवनों का निर्माण एक मजबूत नींव पर होगा, एक नींव जो कभी नहीं गिरेगी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। में, आमीन।
Every week, young women all सप्ताह युवतियां संसार भर में युवतियों के उद्देश्य को दोहराती हैं। भाषा कोई भी हो, हर बार जब मैं इस पंक्ति सुनती हूँ कि हम अपने स्वर्ग पिता की बेटियां हैं जो हमसे प्रेम करता है और हम उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा को आश्वासन देती है कि वे सच है। ये ना केवल हमारी पहचान की स्वीकृति है कि हम कौन हैं, लेकिन हम किसकी हैं। हम उत्कृष्ट पिता की बेटियां हैं। हर देश और हर द्वीप में मैं आत्मविश्वासी स्पष्ट युवतियों से मिली हूँ जो ज्योति से परिपूर्ण, कड़ी मेहनत और परीक्षा से परिकृत हैं, जिनके पास शुद्ध और सरल विश्वास है। वे शुद्ध हैं, वे अनुबंध का पालन करने वाली हैं, वे हर समय और हर बात में और हर स्थान पर परमेश्वर के गवाह के रूप में खड़ी होती हैं। वे जानती हैं वे कौन हैं और परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जब मैं कॉलेज में थी, मैं BYU के अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्यों की सदस्य थी। एक गर्मी में हमारे समूह को यूरोप के मिशन जाने का शानदार मौका मिला था। मेरे लिए कठिन गर्मी का समय था क्योंकि कुछ महीने पहले ही मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। जब हम स्कॉटलैंड में थे, मैंने अकेलापन महसूस किया और हताश हो गई। हमने उस रात चैपल में नृत्य किया और अपने कार्यक्रम के बाद निकट के मिशन होम में चले गए। जब मैं चल रही थी, मैंने एक पत्थर देखा जो कि बहुत तरीके से बगीचे के गेट पर रखा था। इस पर लिखा था, आप जो कुछ भी हैं, अपना किरदार या भूमिका अच्छे से निभाएं। उस क्षण वे शब्द मेरे हृदय में गहरे बैठ गए और मैंने महसूस किया कि स्वर्ग की शक्ति मुझ तक पहुंची है और मुझे ये संदेश दिया है। मैं जानती थी मुझे स्वर्ग के पिता जानते हैं। मैंने महसूस किया मैं अकेली नहीं थी। मैं उस बगीचे में आंखों में आंसू लिए खड़ी रही। आप जो कुछ भी है, अपना किरदार अच्छे से निभाएं। इस सरल संदेश ने मेरी दृष्टिकोण को नया कर दिया कि स्वर्ग के पिता मुझे जानते थे और मेरे लिए उनके पास एक योजना थी, और जो आत्मा मैंने महसूस की थी, इसने मुझे समझने में मदद की मेरी भागीदारी महत्वपूर्ण थी। बाद में मुझे पता चला कि उस संदेश ने एक बार भविष्यवक्ता डेविड ओ मके को प्रेरणा दी थी जब वे स्कॉटलैंड में युवा प्रचारक के रूप में सेवा कर रहे थे। अपने मिशन के निराशा के समय में उन्होंने एक भवन पर उस पत्थर को देखा था और संदेश ने उन्हें प्रेरित किया था। सालों बाद जब उस भवन को गिरा दिया गया था, उन्होंने उस पत्थर को लिया और मिशन होम के बगीचे में लगवा दिया था। परमेश्वर की बेटियों के रूप में हम में से प्रत्येक अपनी परिस्थितियों और अनुभवों में अद्वितीय और भिन्न है, और फिर भी हमारी भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम महत्वपूर्ण हैं। कुछ किसी प्रियजन की मृत्यु और तलाक का सामना करेंगी। पालन पोषण करने, सिखाने और दूसरों की देखभाल करने की हमारी प्रतिदिन की भागीदारी कई बार दुनियावी धूमिल, कठिन और प्रतिष्ठा के खिलाफ लगेंगी। और फिर जब हम युवतियों के उद्देश्य की प्रथम पंक्ति को याद करते हैं, हम अपने स्वर्ग पिता की बेटियां हैं जो हमसे प्रेम करता है, ये हमारे काम करने के, हमारे संबंधों और हमारे तरीकों में परिवर्तन कर देती है। हाल ही में मेरी 92 वर्ष वृद्ध माँ की मृत्यु हुई थी। जिस शांति से उन्होंने अपना जीवन जिया था, वैसे ही शांति से उन्होंने उसे छोड़ दिया। उनका जीवन वह नहीं था कि जैसा उन्होंने योजना बनाई थी। उनके पति मेरे पिता की मृत्यु 45 वर्ष की आयु में हो गई थी। वे उन्हें 3 बच्चों, मैं और मेरे 2 भाइयों के साथ उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। उन्होंने 47 वर्ष विधवा के रूप में बिताए थे। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण दिन में स्कूल में पढ़ाकर और रात में पियानो सिखाकर किया था। उन्होंने अपने वृद्ध पिता मेरे नाना जो कि पड़ोस में रहते थे की देखभाल की थी। उन्होंने सुनिश्चित किया था कि हम सबों के कॉलेज को शिक्षा मिले। उन्होंने इस पर जोर दिया था कि ताकि हम भी योगदान करने वाले बन सके, और उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने अनुबंधों का पालन किया, और क्योंकि उन्होंने इन्हें बनाया था, उन्होंने प्रार्थना, पौरित्य और अनुबंध की प्रतिकाओं की शक्ति पर भरोसा किया था। प्रभु की सेवा में वे विश्वस्त थे। उनकी दृढ़ता ने हमें दृढ़ किया था। वे अक्सर इस धर्मशास्त्र को दोहराती थी, मैं प्रभु बंधित होता हूँ जब तुम मेरी बातों को मानते हो, लेकिन जब तुम मेरी बातों को नहीं मानते तो तुम्हारे लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं है। यह उनका आदर्श था और वह जानती थी वह सच है। वह समझती थी अनुबंध पालन करने का अर्थ क्या होता है। संसार में उनकी कोई पहचान नहीं थी, वह ऐसा चाहती भी नहीं थी। वह जानती थी कि वह कौन थी और वह किसी बेटी थी, परमेश्वर की बेटी। अवश्य ही मेरी माँ के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना काम और अपना किरदार अच्छे से निभाया। स्त्रियों और माँ के विषय में अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली ने एक बार कहा था, हमें स्त्री की शक्ति की अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह माँ ही होती है जो अपने बच्चों के जीवन को सीधे प्रभावित करती है। यह माँ ही होती है जो उन्हें प्रभु के मार्ग में पोषण देती और बड़ा करती है। उनका प्रभाव हमेशा के लिए होता है। वे जीवन की रचना करने वाली है, वे बच्चों का पालन पोषण करने वाली है, वे युवतियों की शिक्षक है, वे हमारी अति आवश्यक साथी है, वे परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने में सहकर्मी है। उनकी भूमिका बहुत महान है, उनकी भागीदारी बहुत शानदार है। माँ या पिता अपनी बेटी के हृदय में इस अनंत सच्चाई को कैसे डाल सकते हैं कि हम परमेश्वर की बेटियां हैं? हम कैसे उनको सांसारिक बातों से बाहर आने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं? नैतिक रूप से असंवेदनशील संसार में युवतियों को ऐसी स्त्री और पुरुष की जरूरत है जो हर समय और हर बात में और हर स्थान पर परमेश्वर के गवाह के रूप में खड़े रहें। आज ये पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। युवतियों की को ऐसी माँ और सलाहकार की जरूरत है जो चरित्रवान स्त्रीत्व का उदाहरण उनके सामने रखें। माँओं, अपनी बेटी के साथ आपके संबंध अति महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण है आपका उदाहरण। आप कैसे उसके पिता से प्रेम और उसके पौरित्य, उसकी दिव्य भूमिका सम्मान करती हो, आपकी बेटी के रवैये और व्यवहार में नजर आएगा और शायद इन्हें अधिक बढ़ाएगा। वह कौन सी भूमिका है जो हमें अच्छे से निभानी या अदा करनी है? परिवार घोषणा में स्पष्ट है, ईश्वरीय रूपरेखा के अनुसार पिताओं को प्रेम और धार्मिकता में अपने परिवारों पर अध्यक्षता करनी होती है और अपने परिवारों के लिए जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उनकी है। माताएं मुख्यतः अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन पवित्र जिम्मेदारियों में माता और पिता का दातव्य होता है कि वे बराबर के साथी के रूप में एक दूसरे की सहायता करें। हम उन लोगों को चेतावनी देते हैं कि जो शुद्धता के अनुबंधों का उल्लंघन करते हैं, जो जीवन साथी या बच्चों से दुर्व्यवहार करते हैं, या जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल होते हैं, वे एक दिन परमेश्वर के समक्ष उत्तरदायी ठहरेंगे। मॉर्मन के समय के पतित समाज में वह दुखी था कि स्त्री की बहुत प्रिय और बहुमूल्य वस्तु, उनके चरित्र और शुद्धता को लूट लिया गया था। फिर से मैं चरित्रवान होने की पुकार को दोहराती हूँ। चरित्रवान होना परमेश्वर की बेटियों की ताकत और शक्ति है। संसार कैसा होगा यदि चरित्रवान होने के लिए उच्च आदर्शों पर आधारित नैतिकता के विचार और व्यवहार हमारे समाज में अति आवश्यक मूल्य के रूप में फिर से स्थापित हो जाते हैं? यदि व्यभिचार, अश्लीलता और दुर्व्यवहार कम होता है तो बहुत कम बिखरे विवाह, टूटे जीवन और टूटे हृदय होंगे। क्या मीडिया परमेश्वर की बहुमूल्य बेटियों को उपयोग की वस्तु बनाने और मर्यादा को कम करने के स्थान पर इन्हें सम्मानजनक और योग्य बनाएगा? यदि संपूर्ण मानवता इस कथन हम अपने स्वर्ग पिता की बेटियां हैं के महत्व को सचमुच में समझती हैं, तो स्त्री को क्या समझा जाएगा और इनके साथ कैसा व्यवहार होगा? कई साल पहले जब यह सम्मेलन केंद्र बन रहा था और निर्माण लगभग पूरा हो गया था, मैं इस पवित्र भवन की बालकनी में टोपी और सुरक्षा चश्मे पहने अपने पति के साथ कारपेट को वैक्यूम से साफ करने आई थी, जिसे लगाने में मेरे पति मदद कर रहे थे। अब जहां मंच है वहां धूल एकत्रित करने की मशीन थी और इस भवन में धूल की बहुत मोटी परत थी। जब वह धूल बैठी थी तो वह नए कारपेट पर जम गई। मेरा काम वैक्यूम करना था तो मैंने वैक्यूम से इसकी सफाई की और करती रही और करती रही। 3 दिनों के बाद मेरी छोटी वैक्यूम मशीन जल गई। इस सुंदर भवन में पहले महासम्मेलन से पूर्व दोपहर को मेरे पति ने मुझे बुलाया। वह कारपेट के आखिरी हिस्से को लगा रहे थे, इस ऐतिहासिक पुलपिट के नीचे। उन्होंने पूछा, इस कारपेट के पीछे मैं कौन सा धर्मशास्त्र लिखूं? और मैंने मुजाया 18 उसकी धर्मशास्त्र हर समय और हर बात में और हर स्थान पर परमेश्वर के गवाह के रूप में खड़े रहो। अत्यधिक चुनौतीपूर्ण संसार में यही गिरजे की युवतियां और स्त्रियां कर रही हैं। वे भलाई के लिए प्रभाव डालती हैं। वे चरित्रवान और आदर्श होशियार और मेहनती हैं। वे बदलाव ला रही हैं, क्योंकि वे औरों से अलग हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से कर रही हैं। सालों पहले जब मैं वैक्यूम से इस कारपेट की सफाई कर रही थी, अपनी छोटी सी जिम्मेदारी को अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी, मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इस पुलपिट के नीचे लगे कारपेट पर खड़ी होंगी। आज परमेश्वर की एक बेटी के तौर पर मैं गवाह के रूप में खड़ी होती हूँ और गवाही देती हूँ कि वह जीवित है, यीशु ही मसीह है, वह हमारा मुक्तिदाता है। उसके अनंत प्राश्चित बलिदान के द्वारा एक दिन मैं उसके पास सिद्ध, शुद्ध और एक अनंत परिवार में मुहर बंद होकर वापस जाऊंगी। एक स्त्री, एक पत्नी और एक माँ होने के लिए मैं सदा उसकी प्रशंसा करूंगी। मैं प्रमाणित करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन परमेश्वर के भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉनसन के द्वारा होता है और उन धार्मिक पुरुषों की आभारी हूँ जिनकी पौरित्य शक्ति ने मेरे जीवन को आशीषित किया है, और मैं हमेशा उस शक्ति की आभारी रहूंगी जो मुझे उद्धारकर्ता के प्राश्चित की योग्य शक्ति से मिलती है। जब मैं अपनी भूमिका को अच्छे से निभाने का प्रयास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Thank you, brethren and sister Dalton. The choir and congregation will now stand.
अब गायक मंडली और सभा खड़े होकर Let Us All Press On गाएगी। गाने के पश्चात 70 के एल्डर क्रेग ए कार्डन हमारा संबोधन करेंगे। उनके पश्चात 12 प्रेरितों की परिषद के एल्डर एम रसल बलार्ड बोलेंगे। फिर गायक मंडली फेथ गाएगी।
This is the 183rd.
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 183rd महासम्मेलन है।
Yeah. During the time of our Savior's mortal ministry, many followed after him, including scribes and Pharisees out of every town of Galilee, Judea.
Galilee ke har shahar se Yehudiya aur Jerusalem ek bistar se laga lakwa se grast vyakti ko changai pane ki ichha ek badi bheed mein le aayi parantu udhaarkarta ke sameep jaane mein asamarth uske mitron ne use uthakar ghar ki chhat se jahan par udhaarkarta tha ko niche utara uske is vishwas ke pradarshan ko dekh अपने सुनने वालों के जाने बिना ही महान उद्देश्य के साथ उद्धारकर्ता ने घोषणा की, मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। मनुष्य को चौंका सकता है और धर्मशास्त्र उसके प्रतिक्रिया के विषय में कुछ नहीं कहता है। आश्चर्यचकित हो सकते हैं यदि यह उद्धारकर्ता समझ में पाता वह वहां क्यों आया था। उद्धारकर्ता जानता था कि एक कोढ़ी सूबेदार के सेवक पथरस की सांस और अन्य कईयों को चंगा किया, विधवा के पुत्र को जीवित किया था। परंतु इस लकवा वाले मनुष्य के साथ प्रभु ने इस गवाही को दोनों शिष्यों और घटना को उसके संसार की भूमिका उद्धारकर्ता के रूप में गवाही देने के लिए चुना था। उद्धारकर्ता के शब्दों को सुनना शास्त्री और फरीसियों ने अपने आप में कारणों को ढूंढना शुरू किया था। नजरअंदाज कर निंदा कर बोलने लगे कि पापों को क्षमा परमेश्वर ही कर सकता है। उनके विचारों को भरमाने लगे कि उद्धारकर्ता उनसे यह कहता है, क्या कारण है तुम्हारे मनों में? क्या कहना आसान है तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ खड़ा और चल? उनके जवाब का इंतजार न करते हुए उद्धारकर्ता ने जारी रखा, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब वह लकवे के रोगी की तरफ मुड़ा, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा, और उसने वैसा किया। इस चमत्कारी शारीरिक चंगाई के द्वारा उद्धारकर्ता ने हम सभी को पुष्टि की, इससे अधिक शक्तिशाली आत्मिक सच्चाई है, मनुष्य का पुत्र पाप क्षमा करता है। बल्कि इस सच्चाई को सभी अनुयायियों द्वारा आसानी से ग्रहण किया गया है। सच्चाई का आसानी से पहचाना ना जाना अत्यावश्यक साथी है। उद्धारकर्ता धरती पर पापों को क्षमा करता है, ना कि अंतिम न्याय पर ही। वह हमारे पापों में नहीं बख्शेगा, हमें अपने पापों में वापस जाने का वह अनदेखा ना करेगा, परंतु जब हम पश्चाताप करें उसके समाचार का पालन करते हैं, वह हमें क्षमा करेगा। इस क्षमादान में हम समर्थ और प्रायश्चित की बचाने वाली शक्ति और करुणशीलता के मैत्रीभाव को लागू होते देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के अभ्यास द्वारा उसके प्रायश्चित की बचाने वाली शक्ति हमें हमारे जरूरत के समय हमें बल प्रदान करती है, और इसकी बचाने वाली शक्ति हमें पवित्र करती है। जैसे हमें स्वाभाविक प्रकृति को त्यागते हैं, यह हम सबों के लिए आशा लाता है, विशेषकर उनके लिए जो मानवता की कमजोरियों में बार बार उभर आने का एहसास करते हैं। उद्धारकर्ता को ईशापुर सहायता और बचाने के बाद भी सात बार, सच में यह अधिक से ज्यादा है, परंतु उद्धारकर्ता ने हमें खोले दया भरे हृदय से जवाब दिया, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि सात बार, वरन सात बार के 70 गुना तक। प्रभु हमसे प्रेम करता है और यह चाहता है हम उसकी क्षमा करने की इच्छा को समझें। सिद्धांत और अनुबंध में 20 से भी ज्यादा बार प्रभु ने जिनसे वह बात करता है कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए, या सामान्य शब्दों में उनमें से आधे मौकों पर प्रभु के साथ सीधे विशेषकर भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के लिए कहे थे, कभी कभी अकेले उन्हीं के लिए, कभी उनके द्वारा जो हुआ करते थे पहले, ये 1830 में आखिर 1843 में रिकॉर्ड हुए थे। यहाँ तक बीते हुए कई सालों से ज्यादा प्रभु जोसेफ को बार बार कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए। इसलिए जोसेफ ने कोई भी बड़ा या अनिष्ट पाप नहीं किया था। हम सभी को अच्छी से याद रखना है कि थोड़ी सी आपत्ति के साथ प्रभु के 7 बार 70 क्षमा को गंभीर पापों के अनुसार सीमा में बनते नहीं हैं। जब कर्टलैंड टेंपल में बोलने का एल्डर एकत्रित हुए, प्रभु ने कहा, मैं करता हूं कि तुमको संसार से ऊपर उठना चाहिए, इसलिए मेरी करुणा तुम पर होगी। प्रभु हमारी कमजोरियों को और संसार के अपूर्ण आदमी और औरत के ऊपर के अनंत परिणामों को जानता है। इस आयत में शब्द इसीलिए उसने दृढ़ता की कि यह सिर्फ उसकी करुणा के सदाचार के द्वारा से आता है, और मैं आखिरकार संसार से ऊपर उठ सके। ये करुणा कैसे प्रकट करता है? उन्हीं एल्ड्रो कर्टलैंड में वे कहता है, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया। उद्धारकर्ता क्षमा करना चाहता है। समझो किसी को इसकी जरूरत नहीं है, यह क्षमा पश्चाताप के बिना नहीं आती। यकीनन प्रभु ने घोषणा की, मैं प्रभु उनके पापों को क्षमा करता हूँ जो मेरे सामने अपने पापों का अंगीकार करें और क्षमा मांगे। और तब होनहार वफादार होने से जोड़कर उसने कभी मृत्यु तक पाप न किया हो। जबकि प्रभु पापों की तनिक भी छूट की दृष्टि से नहीं देखता, और हाँ वह पापों को गहराई के लिए भेदभाव करने वाला है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा क्षमा नहीं की जाएगी, वह अनुबंध करता है। उसने हत्या की गंभीरता को 29 और यौन संबंधी पाप जैसे व्यभिचार पर जोर देकर घोषणा की। यौन संबंधी पाप के गंभीरता को दोहराने के साथ वह अपनी क्षमा प्राप्ति की परेशानी को जानकर बढ़ाता है, और उसने कहा कि वह जो महान ज्योति के विरुद्ध पाप करे वह करोड़ कठोर निंदा प्राप्त करेगा। लगभग उस कृपा में सुधार की अनुमति देता है, न कि तुरंत संपूर्णता की मांग पर। यहाँ तक बहुत पापों को मौकों के साथ नश्वरता की कमजोरी के द्वारा जितनी हम पश्चाताप करें और उसकी क्षमा को खोजते हैं, वह बार बार क्षमा करता है। इस कारणवश हम सभी वे बुरी आदतों से ऊपर से संघर्ष कर रहे हैं, जैसे नशा करने वाले या अश्लीलता में फंसे हुए हैं, वे उसके निकट जाते हैं, जान सकते हैं कि प्रभु उनके नेक प्रयासों को जानेगा और प्रेम पूर्वक क्षमा करेगा। जब पूरी तरह पश्चाताप किया जाएगा, यहाँ तक 770 बार, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि एक पाप की अशुद्धता के साथ इच्छा पूर्वक वापस लौट जाएं। प्रभु हमारे हृदयों में हमेशा से रुचि रखता है और विवेकपूर्ण गलत विश्वास पाप पर न्याय नहीं करते। इस युग में प्रभु अपने ऐसे ही सेवक को चेतावनी उसके गलत घोषणा किए जाने पर देते हैं। उस निकोलाइट बेन को उसके सभी घृणित कामों पर शर्म आनी चाहिए। निकोलटन एक पुराना धार्मिक धर्म संप्रदाय है जो प्रभु की सदाचार की महिमा द्वारा यौन पापों को का लाइसेंस पाने का दावा करते हैं। यह प्रभु को प्रसन्न नहीं करता है। उसकी करुणा और महिमा हमें बचने नहीं देती जब हमारे हृदय संतुष्ट ना हो और हम सच्चाई का पालन नहीं करते हैं, परंतु अनेकता में आनंदित होते हैं। यहाँ तक जो हम कर सकते हैं, उसकी करुणा और महिमा का मतलब है यहाँ तक समय की प्रक्रिया है। हम संसार में प्रायश्चित की समर्थ शक्ति के द्वारा ऊपर उठेंगे। इस कीमती उपहार को विनम्रता से खोजें। कमजोर चीजें हमारे लिए मजबूत होंगी और इसके बल द्वारा हम उसे करने के योग्य होंगे जिन्हें हम कभी अकेले नहीं कर सकते थे। प्रभु की ज्योति की ओर देखते हुए जो हमारे पास है, हमारे इंद्रियों की शिक्षा और हमारे काम, और जब हम पश्चाताप करते हैं उसकी क्षमा को खोजते हैं, वह क्षमा करता है। जैसे हम हमारे जीवनों में और प्रियजनों के परिचय पर विचार करते हैं, हम पूरी तरह से अपने आप को एक समान क्षमा करना चाहिए। मेरे सुसमाचार का प्रचार करो नश्वरती आज से उभरने के लिए विभिन्न तरीकों से बोलती है, और पुरोहित मार्गदर्शकों और सदस्यों को न ही सदमे या निराश होने देती हैं। यदि जांचकर्ता या नए सदस्य ऐसे ही समस्याओं के साथ लगातार जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि हम सलाह देते और प्रत्येक में विश्वास दिखाते और न्यायकर्ता नहीं होते, यह इसका इलाज जैसे एक लौकिक और समझने वाली बात है। क्या हम बच्चों के साथ कुछ कम कर सकते हैं या परिवार के सदस्यों के साथ जो ऐसी ही समस्या में संघर्ष करते हों, स्थायी तौर पर नेकता के रास्ते से भटक गए हों? सच में हमारी स्थिरता धैर्य और प्रेम के जहां हाँ हमारी क्षमता के योग्य है। पिछले अक्टूबर के जनरल महासम्मेलन में अध्यक्ष मॉन्सन ने यह सलाह दी थी, हमें दिमाग में जानने की जरूरत है कि लोग बदल सकते हैं, वे बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, वे उल्लंघन करने में पश्चाताप कर सकते हैं, हम उनकी सहायता और परिस्थितियों में उभरने में कर सकते हैं। हमें व्यक्ति को कि उसकी वर्तमान में क्या है नहीं, परंतु वह क्या कर सकता है, देखने की क्षमता को विकसित करने की जरूरत है। गिरजे के पिछले सम्मेलन में प्रभु ने सदस्यों से कहा, देखो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम शुद्ध हो परंतु पूरी तरह से नहीं। सभी शरीर मेरे सामने दूषित हैं। देखो तुम में से मेरे सामने कुछ दोषी हैं, परंतु मैं तुम्हारी कमजोरी के प्रति करुणामयी हूंगा। आज भी उसका संदेश वैसा ही है। प्रभु जानता है हम क्या झेल रहे हैं, कि हम सब पापी हैं और बार बार परमेश्वर की महिमा में आने वाले हैं, और जिससे वह मानव शरीर की दुर्बलताओं के अनुसार अपने लोगों की सहायता कर सके। वह हमेशा प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पड़ो की शिक्षा देता है। हमें बताया गया है उससे दया के लिए पुकारो, क्योंकि वह बचाने वाला समर्थी है। उसने हमें पश्चाताप करने और क्षमा पाने की आज्ञा दी है, और पश्चाताप करना आसान नहीं है। जैसे हम उसके सुसमाचार का पालन पूरे हृदय के साथ करने को व्यक्त करते हैं, वे वादा करता है, देखो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पापों के बावजूद मेरा अंतर्भाग तुम्हारे लिए दया के साथ भर गया है, मैं तुम्हें निकाल बाहर नहीं करूंगा और क्रोध के दिन में मैं करुणा को याद करूंगा। उद्धारकर्ता क्षमा करता है। प्रत्येक सप्ताह मॉर्मन गायन मंडली इस प्रेरणा भरी प्रस्तुति का प्रारंभ विलियम डब्ल्यू फेल्फस के जाने माने स्तुति गीत के ऊपर उठाने वाले शब्दों के साथ करती है। चौथी आयत के सहानुभूति देते शब्द ज्यादा परिचित नहीं हैं। होली होली इज द लॉर्ड, होली प्रीशियस इज हिज वर्ड, रिपेंट एंड लिव, दो योर सिंस बी क्रिम्सन रेड, ओ रिपेंट एंड ही विल फॉरगिव। उद्धारकर्ता आपसे प्रेम करता है, वह आपसे क्षमा करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको क्षमा करना चाहता है। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में साक्षी देता हूँ, आमीन।
President Packer, we're all looking forward to the 98 version of that wonderful instruction he gave to us. A few weeks ago on a cold winter's night,
कुछ हफ्ते पहले सर्दी की एक अंधेरी रात को मेरी पत्नी बारबरा और मैंने विस्मय से ऊपर आसमान में देखा। लाखों तारे अत्यधिक चमकीले और सुंदर दिख रहे थे। फिर मैंने अनमोल मोती को खोला और फिर आश्चर्यचकित होकर पढ़ा जो प्रभु परमेश्वर ने मूसा से कहा था। मैंने असंख्य संसारों की सृष्टि की है और मैंने इन्हें अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए रचा है, और पुत्र द्वारा मैंने इन्हें रचा है जो कि मेरा इकलौता पुत्र है। हमारे समय में हब्बल गहन अंतरिक्ष दूरबीन ने उन असंख्य तारों की पुष्टि की है जिसे मूसा ने देखा था। हब्बल के वैज्ञानिकों के अनुसार आकाशगंगा, हमारी पृथ्वी और सूर्य जिसके मात्र एक छोटे से अंश है, उस जैसी 2 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। परमेश्वर की सृष्टि इतनी विशाल और विस्तृत है कि मेरे लिए इसका अनुमान लगाना कठिन और गणना करना असंभव है। भाई और बहनों, जिस शक्ति के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की गई थी वह पुरोहित है। हम में से जो गिरजे के सदस्य हैं जानते हैं कि इस पुरोहित शक्ति का स्रोत सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह है। पुरोहित शक्ति द्वारा न केवल स्वर्ग और पृथ्वी को रचा गया था, बल्कि इस शक्ति का उपयोग उद्धारकर्ता ने अपनी नश्वर सेवकाई में चमत्कार करने, रोगियों को आशीष देने और चंगा करने, मृतकों की जीवित करने और पिता के इकलौते पुत्र के रूप में गतसमनी और कलवरी की असहनीय पीड़ा को सहने के लिए किया था। इस तरह न्याय की व्यवस्था को दया के साथ पूरा किया और अनंत प्रायश्चित उपलब्ध करवाया और पुनरुत्थान के द्वारा शारीरिक मृत्यु पर विजय प्राप्त की। इस पुरोहित्य का अधिकार और शक्ति की कुंजियां उसने पत्रस, याकूब और यूहन्ना और अपने अन्य प्रेतों को दूसरों का आशीष देने और जो कुछ पृथ्वी पर बांधा जाता है उसी स्वर में बांधने के लिए दी थी। पुरोहित की शक्ति परमेश्वर का पवित्र और महत्व भार है। ये पुरोहित अधिकार से भिन्न है जो कि परमेश्वर के नाम में कार्य करने का अधिकार है। यह अधिकार या धर्म विधि हाथों को रखने के द्वारा दी जाती है। पुरोहित की शक्ति केवल तभी आती है जब उसका उपयोग योग्यता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाता है, जैसा कि अध्यक्ष स्पेंसर W. किम्बल ने घोषणा की थी। पुरोहित्य धारकों के रूप में प्रभु ने हम सबों को अपने अधिकार का कुछ भाग दिया था, लेकिन हम स्वर्ग की शक्तियों को अपनी व्यक्तिगत धार्मिकता के आधार पर ही उपयोग कर सकते हैं। पुनः स्थापना महिमा पूर्ण समय और आज संसार में यीशु मसीह के गिरजे की पुनः स्थापना के दौरान यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला, पतरस, याकूब और यहुन्ना, मूसा, एलीशा और एलीजा पृथ्वी पर आए थे, और भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के द्वारा इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के कार्य को करने के लिए पुरोहितों की कुंजियां और अधिकार दिया था। इन कुंजियों के द्वारा, इस अधिकार और इस शक्ति से आज यीशु मसीह का गिरजा, जिसका मुख्य मसीह है जीवित भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉनसन और विद्वित नियुक्त और अभिषेक किए गए प्रेरितों द्वारा संचालन होता है। हमारे स्वर्गीय पिता की महान पुरोहित इंडो योजना में पुरुषों के पास पुरोहित से सेवा करने की एक अद्भुत जिम्मेदारी है, लेकिन वे पुरोहित नहीं है। पुरुष और स्त्रियों की भिन्न लेकिन एक समान महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। ठीक जिस प्रकार स्त्री बिना पुरुष के गर्भधारण नहीं कर सकती, उसी प्रकार बिना स्त्री के पुरुष एक अनंत परिवार को स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से पुरोहित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, अनंत दृष्टिकोण में प्रजनन शक्ति और पुरोहित शक्ति दोनों पति और पत्नी आपस में साझा करते हैं, और पति और पत्नी के रूप में पुरुष और स्त्री को स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम, विनम्रता और धैर्य के मसीह गुण उनके केंद्र बिंदु होने चाहिए, जब वे अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए पुरोहित की आशीषों को खोज करते हैं। हमारे लिए समझना अति महत्वपूर्ण है कि स्वर्गीय पिता ने अपनी सभी बेटों और बेटियों के लिए पुरोहित की शक्ति के द्वारा आशीषें और बल पाने का मार्ग उपलब्ध किया है। बच्चों के लिए परमेश्वर की योजना का केंद्र उसकी स्वयं की घोषणा, मनुष्य को अमृतत्व और अनंत जीवन उपलब्ध कराना मेरा कार्य और मेरी महिमा है। सिद्धांत और अनुबंध के खंड 81 में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की दिए एक प्रकटीकरण में प्रभु समझाता है कि पुरोहित्य की शक्ति का उपयोग कमजोर को सहायता, निराश को उत्साह और कांपते घुटनों के बल देने के लिए किया जाना चाहिए, और इन कामों को करने में आप अपने साथियों के लिए महान भलाई करोगे और उसकी महिमा बढ़ाओगे जो कि तुम्हारा प्रभु है। जब हम कमजोर की सहायता करने, निराश को उत्साह देने और कांपते घुटनों को बल देने के दृश्य पर विचार करते हैं, तो मैं 7 साल की लड़की के विषय में सोचता हूँ जो अपनी दादा को टमाटर का पौधा दिखा रही है, जिसे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के तौर पर बीज से उगाया था। उसने समझाया कि एक छोटे बीज से पौधा निकलता है, और यदि पौधे को ठीक से देखभाल की जाए तो बहुत से टमाटर लगते हैं, जिससे कई सारे बीज मिलते हैं। वह बोली, और यदि सभी बीजों को उगाया जाए और बहुत से टमाटर पैदा किए जाएं और आप उन सभी बीजों को उगाएं, तो कुछ ही मौसम में आपके पास लाखों टमाटर होंगे। इतने सारे, आश्चर्यचकित होकर बोली, एक छोटे बीज से। लेकिन वे फिर बोली, मैंने लगभग अपने पौधे को मार दिया था। मैंने इसे अंधेरे कमरे में रख दिया और पानी डालना भूल गई। जब मुझे पौधे की याद आई, पूरी तरह मुरझा गया था और मरा सा हो गया था। मैं रोई क्योंकि मैंने उन लाखों टमाटर के बारे में सोचा जो कभी पैदा नहीं हो सकते थे। तब वे अपने दादा को उस चमत्कार के बारे में बताकर उत्साहित हुई। उसने समझाया, मामा ने कहा था, हो सकता है कि पौधा मर ना हो, हो सकता है उसका जीवन वापस लाने के लिए केवल कुछ पानी और कुछ प्रकाश की जरूरत हो। और उन्होंने सही कहा था, मैंने पौधे को कुछ पानी दिया और प्रकाश के लिए खिड़की के पास रखा, और कल्पना करो क्या हुआ, उसने पूछा, इसमें जीवन वापस आ गया और अब इसमें से लाखों टमाटर पैदा होंगे। उसका विशाल संभावनाओं से भरा छोटा टमाटर का पौधा, जो कि अनजाने में हुई लापरवाही के कारण बहुत कमजोर होकर मुरझा गया था, को छोटी लड़की की प्रेम भरे और देखरेख करने वाले हाथों द्वारा मात्रा पानी और प्रकाश देने की सरल सेवा से बल और जीवन मिला था। भाइयों और बहनों, स्वर्ग में हमारे प्रेमी पिता के वास्तविक आत्मिक बच्चों के रूप में हमारे पास अनगिनत दिव्य संभावनाएं हैं। लेकिन यदि हम ख्याल नहीं रखते तो हम मुरझाए टमाटर के पौधे के समान हो सकते हैं। हम यीशु मसीह के सच्चे सिद्धांत और सुसमाचार से दूर निकलकर और अपने आप को उद्धारकर्ता के अनंत प्रेम और पुरोहित शक्ति के दिव्य प्रकाश और जीवन के जल से अलग करके आत्मिक रूप से कमजोर होकर मुरझा जाएंगे। जो पुरोहित धारण करते हैं और अपने परिवार और दूसरों की सेवा करके इसका आदर करने में निरंतर असफल रहते हैं, वे उनके समान हैं जिन्हें पुरोहित की शक्ति के साथ जुड़ी आशीषें प्राप्त नहीं होती और अपने आप को जरूरी आत्मिक भोजन, प्रकाश और अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को वंचित रखते हुए अवश्य ही आत्मिक रूप से मुरझा जाएंगे, जैसा कि वह टमाटर का पौधा जिसमें बहुत सी संभावनाएं थी लेकिन लापरवाही के कारण मुरझा गया था। यही पुरोहित शक्ति जिसने संसार, आकाश गंगाएं और समस्त विश्व की रचना की थी, हमारे परिवारों, हमारे मित्रों और हमारे पड़ोसियों की सहायता करने, बल और आशीष देने के लिए हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती हैं और होनी चाहिए। अन्य शब्दों में, उन कामों को करना जिन्हें उद्धारकर्ता स्वयं करता यदि वे आज हमारे बीच होता। और इस पुरोहित शक्ति का मुख्य उद्देश्य हमें आशीष देना, पवित्र और शुद्ध करना है, ताकि हम पुरोहित मुहरबंदी द्वारा बंद कर हमारे अनंत माता पिता की उपस्थिति में अपने परिवार के साथ मिलकर रहे और परमेश्वर यीशु मसीह के शानदार कार्य में भाग लेते हुए हमेशा उसकी ज्योति और महिमा को फैलाएं। अंत में, कुछ महीने पहले मुझे 2013 की वीडियो पर आधारित विश्वव्यापी मार्गदर्शक प्रशिक्षण पुरोहित द्वारा परिवार और गिरजे को मजबूती देने में भाग लेने का अवसर मिला था। इस नवीन और शिक्षाप्रद डीवीडी का 66 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये सिखाती है कैसे पुरोहित शक्ति हमारे जीवन, हमारे परिवार और गिरजा के सभी सदस्यों के जीवन को आशीष, शक्ति और सक्रियता दे सकती है। ये दिखाती है सब पुरुष, स्त्री, बच्चे, विवाहित, विधवा या अविवाहित, हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, कैसे पुरोहितों की आशीषों में भागीदारी कर सकते हैं। इस 8 से 12 मिनट के लघु चित्र है जो पुरोहित की कुंजियां, अधिकार और शक्ति को समझाते हैं और बताते हैं कैसे ये व्यक्ति, यों परिवारों और गिरजे को मजबूत दे सकती हैं। एक विशेष दृश्य मेरी माँ की पढ़ दादी मेरी फील्डिंग स्मिथ के छोटे पर प्रदर्शक घर में फिल्माया गया था। वह हायरम भविष्यवक्ता जोसेफ के बड़े भाई की विधवा थी। एक अकेली माँ के रूप में पुरोहित्य में अपने मजबूत विश्वास के जरिए उन्होंने सुसमाचार के प्रकाश और प्रेम में अपने बच्चों का पालन पोषण करने और आशीष देने के लिए उस शक्ति को पुकारा और भरोसा रखा। आज हजारों की संख्या में उनकी पीढ़ी के गिरजे के विश्वासी, मार्गदर्शक और सदस्य उनके विश्वास, साहस और उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। ये नया मार्गदर्शक प्रशिक्षण देखने और सुनने के लिए अब इंटरनेट lds.org पर उपलब्ध है। आप इसे lds.org देख सकते हो या अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट उपकरणों पर डाउनलोड कर सकते हो। प्रथम अध्यक्षता ने स्टेक अध्यक्षताओं और धर्म अध्यक्षताओं को संपूर्ण डीवीडी को देखने के लिए एक या अधिक परिषद सभा करने के लिए कहा है। स्टेक और वार्ड परिषदों को प्रस्तुत की गई शिक्षाओं को लागू करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। इसकी विशेष वस्तु पुरोहित कोरम सहायता संस्था रविवार विद्यालय युवकों युवतियों विशेषकर उन्हें जो मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्राथमिक सभाओं या पांचवें रविवार की मिली जुली सभा में सदस्य को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगी। परिषद के सदस्य फिर व्यक्तियों और माता पिता को इस प्रस्तुति का उपयोग अपने परिवार में करने के लिए उत्साहित करने के योग्य होंगे। भाइयों और बहनों, ये मार्गदर्शक प्रशिक्षण गिरजे के प्रत्येक सदस्य के लिए है। माता पिता, जो आप सीखते हैं अपने बच्चों से बांटें, समीक्षा और चर्चा करें और उन्हें भी उसे उन्हें दिखाएं, अपने साथ कार्य करने दें ताकि आपके परिवार पुरोहित शक्ति जरिए मजबूत हो सके। यीशु ने कहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, बरन जो जल में उसे दूंगा वह उससे सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जगत की ज्योति में हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन ज्योति पाएगा। यदि आप में से कोई भी महसूस करता है कि आपका विश्वास या स्वर्ग पिता की योजना की गवाही कम है, तो उसे अधिक संपूर्ण से उद्धारकर्ता के पास आना चाहिए। उसकी ज्योति और जीवन के जल को ये वह कार्य को करने दो जो उस कमजोर टमाटर के पौधे के लिए मैं जीवन वापस लाने के लिए पानी और प्रकाश ने किया था। पुरोहित की शक्ति के द्वारा परमेश्वर की रचना में मैं आश्चर्य करता और अचंभित होता हूँ। मैं खड़े होकर अचरज करता हूँ, क्या हमें निर्देश और आशीष देने की परमेश्वर की शक्ति को कभी पूरी तरह समझा जा सकेगा? मुझे लगता है मैं आपसे बहुतेरे ऐसे ही सोचते हैं। ये बहुत महान है, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत है। जो स्मिथ ने कहा था, पुरोहित्य अनंत तीन सिद्धांत है और अनंत काल से परमेश्वर के साथ अस्तित्व में था और अनंत काल तक बना रहेगा, बिना दिनों के आरंभ से या वर्षों के अंत तक। परमेश्वर ने उदारता से अपनी शक्ति उनको दी है उसके पुरोहित्य को स्वीकार और आदर करते हैं, जो कि अमरत्व और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की गई आशीषों को ले जाती हैं। मैं प्रमाणित करता हूँ कि यीशु मसीह का कार्य पुरोहितों के द्वारा पूरा किया जाता है। ये वही शक्ति है जिसके द्वारा हमारे स्वर्ग पिता और उसके प्रिय इकलौते पुत्र ने इस पृथ्वी को रचना की थी और हमारे लिए सुख की महान योजना का आरम्भ किया था। हम बुद्धिमान बने और अपने स्वयं के जीवन, हमारे परिवार के जीवन और अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे को परमेश्वर की शक्ति द्वारा मजबूती देने का प्रयास करें। यीशु मसीह के नाम से ये मेरी प्रार्थना है, आमीन।
सुंदर संगीत प्रदान करने के लिए हम गायक मंडली का आभार व्यक्त करते हैं। इस सत्र के अंतिम वक्ता प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार अध्यक्ष हेनरी बे आयरिंग होंगे। अध्यक्ष आयरिंग के संदेश के पश्चात गायक मंडली माय रिडीमर लिप्स गाकर सभा का समापन करेगी। उसके पश्चात समापन प्रार्थना प्राथमिक महाअध्यक्षता में प्रथम सलाहकार बहन जीन स्टीवेंस करेंगी।
I am grateful to be with you in this conference.
मैं आपके साथ अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे के सम्मेलन में एक शामिल होने के लिए आभारी हूँ। ये उसका गिरजा है। हम अपने ऊपर उसका नाम धारण करते हैं जब हम उसका राज्य में प्रवेश करते हैं। वह एक परमेश्वर सृष्टिकर्ता और परिपूर्ण है। हम मृत्यु और पाप के अधीन नश्वर हैं। फिर भी हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए अपने प्रेम में वह हमें उसके निकट आने का निमंत्रण देता है। उसके शब्द इस प्रकार हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। निष्ठा से मुझे पाने का प्रयास करो और तुम मुझे पाओगे। मांगो और तुम्हें मिलेगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस ईस्टर के समय हमें याद दिलाया गया है हम क्यों उससे प्रेम करते हैं और उसके वादे को जो वह अपने विश्वासी शिष्यों को उसके प्रिय मित्र बनने के लिए करता है। उद्धारकर्ता ने उस वादे को किया और हमें बताया कैसे उसके प्रति हमारी सेवा में वह हमारे पास आते हैं। ओलिवर काउडरी को एक प्रकटीकरण में जब वह भविष्यवक्ता जोजो स्मिथ के मार्मन की पुस्तक के अनुवाद में प्रभु की सेवा कर रहा था, देखो तुम ओलिवर और तुम्हारी इच्छा के कारण मैंने तुमसे बात की है, इसलिए इन शब्दों को अपने हृदय से संजोड़ कर रखो। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वसनीय और निष्ठावान रहो और मैं तुम्हें अपने प्रेम और भावों में घेर लूंगा। आज्ञा पालन के छोटे छोटे कामों को करके मैंने उसके पास आने और उसका मेरे पास आने में आनंद और महसूस किया है। आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुए होंगे। हो सकता है यह तब हुआ हो जब आपने प्रभु सभा जाने का निर्णय लिया था। मेरे साथ यह तब हुआ था जब बहुत छोटा था। उन दिनों में प्रभु शाम को सभा होती थी। 65 साल पहले एक दिन की याद अभी भी मुझे उद्धारकर्ता के निकट ले जाती है जब मैंने अपने परिवार और संतों के साथ एकत्रित होने और की आज्ञा का पालन किया था। उस शाम बाहर अंधेरा और ठंड थी। अपने माता पिता के साथ चैपल के अंदर प्रकाश और गर्माहट का एहसास मुझे याद है। उसके बेटे को हमेशा याद रखने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने का अपने आनंद पिता के साथ अनुबंध बनाते हुए हमने हारूनी पुरोहित धारकों द्वारा दिए गए प्रभु भोज के लिए गाया। सभा के अंत में इन शब्दों के साथ, ओ सेवियर स्टे दिस नाइट विद मी, हमने स्तुति गीत अबाइड विद मी टिस इवन टाइड गाया था। उस शाम मैंने उद्धारकर्ता के प्रेम और निकटता को महसूस किया था और मैंने पवित्र आत्मा को दिलासा को भी महसूस किया था। अपनी युवावस्था में एक बार फिर से उस प्रभु भोज सभा के दौरान महसूस किए गए उद्धारकर्ता के प्रेम और उसकी निकटता को अनुभूतियों का जगाना चाहता था। इसलिए मैंने एक अन्य आज्ञा का पालन किया। मैंने धर्मशास्त्र को खोजा। उनमें मैं जानता था पवित्र आत्मा पाने के लिए मैं फिर से वापस जा सकता हूँ कि जो उठे प्रभु के दोनों चेलों ने क्या महसूस किया था जब उसने उनके घर आने और उसके साथ रहने का निमंत्रण स्वीकार किया। मैंने उसके सूली पर चढ़ाए जाने और दफनाए जाने के तीसरे दिन बाद के बारे में पढ़ा। विश्वासी स्त्री और दूसरे लोगों ने पत्थर को कब्र से दूर लुढ़काया हुआ पाया और देखा उसका शरीर वहां नहीं था। वह वहां उसके प्रेम के कारण उसके शरीर का अभिषेक करने आए थे। दो स्वर्गदूत पास खड़े थे और पूछा वह भयभीत क्यों हो और कहा तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। मरकुस के सुषमाचार में वह स्वर्गदूतों में एक निर्देशन को जोड़ता है परंतु तुम जाओ और उसके चेलो और पत्रस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा जैसा उनने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। प्रेरित और चेले यरूशलम में एकत्रित हुए जैसे हम भी हो सकते थे। वे भयभीत और आश्चर्यचकित थे जब वे मिलकर बात कर रहे थे कि मृत्यु और उसके पुनर्जीवित होने की खबर को उनके लिए क्या अर्थ था। उस शाम के समय मार के पुनर्जीवित मसीह प्रकट हुआ और उनके साथ चला, प्रभु उनके पास आया था। लूका की पुस्तक उस शाम हमें उनके साथ चलने का अनुभव कराती है। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आपस आकर उनसे उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि वे उससे पहचान ना सके। और उसने उनसे पूछा, क्या बातों और तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास हो खड़े गए। क्या तुम यरूशलम के अकेले परदेशी हो जो नहीं जानता कि इन दिनों उस में क्या हुआ था? उन्होंने उससे अपने दुख के विषय में बताया कि यीशु मर गया था, जबकि वह भरोसे करते करते वह इज़राइल का मुक्तिदाता होगा। जी उठे प्रभु की आवाज में अवश्य ही लगाव रहा होगा जब वह इन दुखी और शोकित शिष्यों से बात कर रहा था। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये उठाकर अपनी महिमा को प्रवेश करे? फिर वह क्षण आया जिसने जब से मैं एक छोटा लड़का था तब से मेरे हृदय को जोश दिया है। और इतने में वह उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या को चल रही थी और दिन बहुत ढल गया था। उस रात उद्धारकर्ता ने इमाउस गांव में निकट उसके चेलों के घर में प्रवेश करने के निमंत्रण को स्वीकार किया था। वह उनके साथ भोजन पर बैठा, उसने रोटी ली और आशीषित किया, तोड़ा और उन्हें दिया। उनकी आंखें खुल गई थी और वे उसे पहचान गए। तब वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया था। लूका हमारे लिए उन आशीषित चेलों की अनुभूतियों को लिखता है। और उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बात करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई थी? उसी समय ये दोनों चेले 11 प्रेरितों को जो उनके साथ हुए थे उससे बताने यरूशलम वापस लौटे। उसने उसके पिता के सब बच्चों को पापों और मृत्यु के बंधन में को तोड़ने के लिए प्रायश्चित के उसके मिशन और भविष्यवाणियों की समीक्षा की और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलम से लेकर जब जातियां में मन फिराव और अपने पापों की क्षमा का विचार उसी के नाम में किया जाएगा, और तुम इन सब बातों के गवाह हो। उद्धारकर्ता के शब्द हमारे लिए भी उतने ही सच्चे हैं जितने उसके चेलों के लिए थे। हम इन बातों के गवाह हैं। हम आनंदिक जिम्मेदारी जो हमने अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे में बपतिस्मा लेकर स्वीकार की है, वे हमें भविष्यवक्ता आलमा द्वारा सदियां पहले मार्मन के जल में स्पष्ट कर दिया गया था। और ऐसा हुआ, उसने उनसे कहा, देखो यहाँ मार्मन का जल है, और अब जबकि तुम परमेश्वर के बारे में आना चाहते हो और उसके लोग कहलाना चाहते हो और तुम एक दूसरे के बोझ उठाने की मदद करना चाहते हो ताकि वे हल्के हो जाओ, हाँ, और उनके दुख से दुखी होने को तैयार हो जो दुखी हैं, हाँ, और उनके दिलासा देने हो जिन्हें दिलासा की जरूरत है, और सभी मौकों पर और सभी बातों में और सभी स्थानों में, चाहे जहां भी तुम हो, यहां तब की मृत्यु तक परमेश्वर की गवाह के रूप में खड़े होने चाहते हो, ताकि तुम परमेश्वर द्वारा मुक्ति पा सको। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारे हृदय की यही इच्छा है, तब प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेकर उसके सामने एक गवाह के रूप में तुमने उसके साथ अनुबंध किया है कि विरोध तुम्हारे आसपास क्या कारण है कि तुम उसके सेवा करोगे और आज्ञाओं का पालन करोगे। और जब लोगों ने इन शब्दों को सुना, उन्होंने आनंदित होकर अपने हाथों से ताली बजाई और चिल्लाए, ये हमारे हृदय का इच्छा है। हमने अनुबंध बनाया है कि जब तक हम जीवित हैं, हम जरूरतमंद की मदद करेंगे और उधारकर्ता की गवाह बनेंगे। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम उधारकर्ता के लिए प्रेम और हमारे लिए उसके प्रेम का महसूस करते हैं। जब हम अपने बनाए अनुबंधों के प्रेरित विश्वासी रहते हैं, तो हम उसके लिए अपने प्रेम में वृद्ध और को महसूस करते हैं, क्योंकि हम उसकी शक्ति को उसकी सेवा में उसकी निकटता में महसूस करेंगे। अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन ने अक्सर प्रभु की उसके विश्वासी चेलों के लिए वादे को याद दिलाया है, और जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है, मैं भी ग्रहण करता हूँ, क्योंकि तुमसे पहले मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे दाएं और तुम्हारे बाएं होऊंगा, और मेरी आत्मा तुम्हारे हृदय में होगी, और मेरी स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर तुम्हें थामे रहेंगे। एक अन्य तरीका है जिसमें आपने और मैंने उसे हमारे निकट महसूस किया है, जो हम निष्ठा से उसकी सेवा करते हैं, वे उनके निकट आते हैं। हर बार जब भी मुझे प्रेम प्रभु की सेवा में बाहर जाने में मेरे परिवार को छोड़ने के लिए नियुक्त किया जाता है, मैंने देखा कि प्रभु मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को आशीषित कर रहा था। आपने उसी आशीष को अपने जीवन में महसूस किया है। आप में से बहुतों के प्रियजन अनंत जीवन के मार्ग से भटक गए हैं। आप चिंतित हैं कि उन्हें वापस लाने के लिए क्या करें। आप प्रभु पर भरोसा रखें, वह उनके पास जाता है। आप विश्वास में उसकी सेवा करते हैं। आपको जोसेफ स्मिथ और सिडनी रिगडम के प्रभु का वादा याद है, जब वे उसके काम करने के लिए अपने परिवारों से दूर गए थे। मेरे मित्र सिडनी और जोसेफ, तुम्हारा परिवार कुशल है, वे मेरे हाथों में है, और जो मुझे उचित लगेगा मैं उनके साथ करूंगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। आलमा और राजा मोजाया की तरह कुछ विश्वासी माँ बाप ने प्रभु की बहुत अधिक और अच्छी सेवा की है, फिर भी उनके बच्चे प्रभु के लिए अपने माँ बाप के बलिदान में के बावजूद भटक गए हैं। उन्होंने वह सब किया जो वे कर सकते थे, कोई फायदा नहीं नजर आया, यहाँ तक कि अन्य प्रेमी और विश्वासी मित्रों से भी मदद ली। आलमा और उसके समय के संतों ने उसके बेटे और राज मुजाय के बेटे के लिए प्रार्थना की थी। अपनी प्रार्थनाएं और उनकी प्रार्थनाएं जो विश्वास करते हैं अपने परिवार के सदस्यों की मदद के लिए प्रभु के सेवकों को लाएंगी। वे परमेश्वर के घर का मार्ग चुनने की मदद करेंगे, चाहे शैतान और उसके अनुयायी, जिनका उद्देश्य परिवारों को इस जीवन में अनंतता में नष्ट करना है। आप कनिष्ठ आलमा और मुजाया के बेटों और उनके विद्रोह में स्वर्गदूत द्वारा बोले गए शब्दों को याद करो। और फिर स्वर्गदूत ने कहा, देखो प्रभु ने अपने लोगों की प्रार्थनाओं और उनके सेवकों की प्रार्थनाओं को भी सुना है। आलमा जो कि तुम्हारा पिता, क्योंकि उसने भारी विश्वास से साथ तुम्हारे संबंध में प्रार्थना की है कि तुम्हें सत्य और ज्ञान कराया जाए, इसलिए परमेश्वर की शक्ति और अधिकार का तुम्हें विश्वास दिलाने के उद्देश्य से मैं आया हूँ कि उसके सेवकों और प्रार्थनाओं का उत्तर उनके विश्वास के अनुसार दिया जा सके। लेकिन मैं वादा कर सकता हूँ कि उद्धारकर्ता आपके निकट आएगा और आपको और आपके परिवार को वह आशीष देगा जो उत्तम होगी। जब आप अपने हाथ बढ़ाकर दूसरों की सेवा करते हो, आप उसके प्रेम की दिलासा और उसकी निकटता को महसूस करोगे। जब आप उनके घावों में मरहम लगाते हो जिनको जरूरत है, और उसके प्रायश्चित से उन्हें शुद्ध होने का मौका देते हो जो पाप से दुखी हैं, प्रभु की शक्ति आपको सहारा देगी। हमारे स्वर्गीय पिता के बच्चों को राहत और आशीष देने के लिए उसकी बाहें आपके परिवार सहित आपकी बाहों के साथ आगे बढ़ती हैं। हमारे लिए शानदार घर वापसी की तैयारी की गई है। हम उस प्रभु के वादे को पूरा होते देखेंगे जिससे हमने प्रभु प्रेम किया था। वह उसके और हमारे स्वर्गीय पिता के साथ अनंत जीवन में हमारा स्वर्ग स्वागत करता है। यीशु मसीह ने इसकी व्याख्या इस तरह से की है, आगे बढ़ने और मेरे सेयोन की स्थापना करने का प्रयास करो, सब कामों और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। क्योंकि जो जीवित हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और जो मर जाते हैं वे अपने परिश्रम में विश्राम पाएंगे, और उनके काम उनके साथ जाएंगे, और वे मेरे पिता के महल में मुकुट पाएंगे जो कि मैंने उनके लिए तैयार किया है। मैं गवाही देता हूं कि आप आत्मा के द्वारा स्वर्गीय पिता के निमंत्रण, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो का अनुसरण कर सकते हो। उसके शब्दों और उसके उदाहरण द्वारा मसीह ने हमें दिखाया है उसके निकट आना है। स्वर्ग पिता के प्रत्येक संतान जिसने बपतिस्मा के द्वारा से अपने उसके गिरजे में प्रवेश किया है, उसके सुषमाचार के सीखने और उसके नियुक्त सेवकों को उसके निमंत्रण मेरे पास आओ और सुनने का मौका मिलेगा। उसके प्रत्येक अनुबंधित सेवक और पृथ्वी पर उसके राज्य और आत्मा के संसार में आत्मा के से निर्देशन पाते हैं जब वे दूसरों को आशीष देने और सेवा करने के लिए उसका निर्देशन मिलता है, फिर वे उसका प्रेम महसूस करेंगे और उसका निकट आने का आनंद पाएंगे। मैं प्रभु के पुनरुत्थान की उतनी दृढ़ता से गवाही देता हूं मानो उस शाम में स्वयं उन दो चेलों के साथ इमाउस के निकट उस घर में था। मैं उतनी दृढ़ता से जानता हूं कि वे जीवित है जितनी दृढ़ता से जोसेफ में जानता था जब उसने पिता और पुत्र को पलमायरा में उपवन में उस चमकदार सुबह के प्रकाश में देखा था। ये यीशु मसीह का सच्चा गिरजा है। केवल अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन को सौंपी गई पौरोहित्य कुंजियों में हमें अपनी परिवारों में अनंत काल तक स्वर्ग पिता और यीशु मसीह के साथ रहने के लिए मुहरबंद करने की शक्ति है। हम न्याय के दिन उद्धारकर्ता के आमने सामने खड़े होंगे। ये उनके लिए आनंद का समय होगा जो इस समय में उसकी सेवा करते हुए उसकी निकटता में गए हैं। वे इन शब्दों में सुनेंगे, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, मैं जीवित उद्धारकर्ता और हमारे मुक्तिदाता और यीशु मसीह की गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Our beloved Father in heaven, we come before you.
प्रिय पिता, हम आपके सामने आते हैं इस समापन के समय में, इस ओपनिंग सेशन में जनरल कॉन्फ्रेंस की, और हम अपने प्यार के आभार के लिए और आपका आभार के लिए जो आपने हमें दिया है इस महत्व के लिए, उसकी उपहार यीशु मसीह के उपहार के लिए और हमारे उद्धारकर्ता और हमारे मुक्तिदाता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी प्रोहित्य के लिए, टेम्पल कवनेंट्स के लिए, स्क्रिप्चर्स के लिए और लिविंग अपोस्टल्स और प्रोफेट्स के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जीवित भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट मॉनसन के लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, जैसे उनकी काउंसलर्स के लिए और बारों के परिषद के लिए और उस असिस्टेंट की उन्होंने उनकी सहायता करी है। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस महान शब्दों के लिए जो आपने दिया है और संगीत के लिए जो बहुत मधुर है, और इस दिन के लिए हम इस सेशन के क्लोजिंग के आते हैं। हम आपसे प्रेयर करते हैं कि आपकी स्पिरिट हमारे साथ रहे और हम इसको अपने साथ ले जा सकें और अपने आप को, अपने विश्वास को बढ़ा सकें और जीसस क्राइस्ट में और उसकी अपार विटनेस बन सकें और उसके प्यार कर लें और उसके सेक्रीफाइस का हम गवाही दे सकें और लोगों से उनकी गॉस्पेल के बारे में शेयर कर सकें और उसकी एबिलिटी के लिए और उसके पवित्र नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
This has been the first session of the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public.
इसका प्रसारण बॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप किया गया। बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।